हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेहर की जान बचाने के बाद ध्रुव उसके साथ अकेला था। मेहर और ध्रुव के होठों के बीच थोड़ी ही दूरी थी, वो उसके और करीब आ रही थी, लेकिन ध्रुव कुछ कदम पीछे हट गया। न जाने क्यों, एक पल के लिए उसे मेहर के साथ अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। मेहर उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी, तभी ध्रुव ने सफाई देते हुए कहा, मुझे इस तरह खुले में इंटीमेट मोमेंट्स क्रिएट करना अच्छा नहीं लगता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मेहर ने जवाब दिया। मेहर और ध्रुव ने वहां खड़े होकर लगभग आधे घंटे तक बात की। दोनों एक दूसरे के करीब भी थे, लेकिन दोनों के बीच एक अनजानी सी दूरी थी। इस बीच मेहर के मोबाइल पर कॉल आया। उसने ध्रुव से कहा, मुझे अब जाना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं अलीजा को कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हारी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी, ध्रुव ने कहा और तुरंत अलीजा को कॉल करके वहां आने को कहा। लगभग 10 मिनट में अलीजा वहां पर पहुंच चुकी थी। अलीजा ने एक नज़र मेहर को देखा और फिर शरारती अंदाज में ध्रुव से कहा, अच्छा तो ये है मेरी होने वाली भाभी, साथ में दोनों अच्छे लग रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ कॉम्प्लीमेंट देने के लिए नहीं बुलाया है, तुम मेहर के साथ दिल्ली जा रही हो, उसे छोड़ने के बाद ही घर आओगी और मुझे अपडेट देती रहोगी, ध्रुव ने सीरियस टोन में कहा। अपने अलावा ध्रुव को अगर किसी पर यकीन था तो वो वीर और अलीजा थे। वीर इस वक्त तारा के साथ था, तारा को भी वो अकेले नहीं छोड़ सकता था, इस वजह से भी ध्रुव खुद नहीं जा सकता था, तो उसने अलीजा को इस काम के लिए चुना। वैसे भी उसकी ट्रेनिंग काफी अच्छे से हुई थी। तो मेरी होने वाली भाभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मैं इसे बहुत अच्छे से निभाऊंगी, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, अलीजा ने सिर हिलाकर कहा। ध्रुव ने उसकी बात पर हामी भरी। ध्रुव ने एक सिंपल सा बाय कहा और फिर अलीजा की गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगा। मेहर ने इतनी फॉर्मल बाय की उम्मीद नहीं की थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अलीजा ने कहा, थोड़ा बोरिंग है पर कमाल का इंसान है। मेहर उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर अलीजा के साथ वहां से जाने को निकल गई। तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव भी वापस घर जाने लगा। वहीं ध्रुव को गए हुए काफी टाइम हो चुका था। उसका इंतजार करते हुए तारा चहलकदमी कर रही थी, जबकि वीर उसके पास बैठा उसे चक्कर काटते हुए देख रहा था। तुम्हारे इस तरह इधर उधर घूमने से वो जल्दी नहीं आ जाएगा, थोड़ी देर पहले तो तुम्हें वीकनेस फील हो रही थी और अब तुम बेवजह चक्कर काटने में लगी हो, क्या बात है, तुम उसका इंतजार क्यों कर रही हो, वीर ने आंखें छोटी करके तारा की तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं, उसकी किचकिच सुनने की आदत हो चुकी है और मन में एक अजीब सा डर भी हो रहा है। वो ठीक होगा ना, तारा ने काफी केयरिंग टोन में कहा। उसका दिल थोड़ा घबरा रहा था और वो जानती थी कि अगर उसे किसी चीज की इंट्यूशन हो रही है तो वो गलत नहीं हो सकती थी। तारा को इस तरह ध्रुव की फिक्र करते देखकर वीर ने हंसकर कहा, उसके लिए इतना फील करने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा और वो आ जाएगा। इतना कहकर वीर उसके कमरे से उठकर बाहर आने लगा। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, ये लड़की तो बिल्कुल कृषा आंटी की तरह बिहेव कर रही है, जरूर ध्रुव को यकीन दिलाने के लिए ये सब कर रही होगी, शक्ल से ही मासूम है वरना तो पूरी चालबाज लगती है। वीर नीचे आकर बैठ गया था। वो जानता था कि अगर वो तारा के सामने बैठा रहा तो वो बार बार उसे ध्रुव को कॉल करने को कहेगी, जबकि ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं था कि काम करते वक्त उसे कोई कॉल करके डिस्टर्ब करे। वहीं दूसरी तरफ लंदन में कृषा युग के साथ थी। युग लैपटॉप पर कुछ कर रहा था जबकि कृषा उसके पास में बैठी हुई थी, वो बिल्कुल शांत थी। तो युग ने उसकी तरफ देखकर उठकर पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना कृष, तुम पिछले 20 मिनट में एक शब्द भी नहीं बोली हो, मैंने तुम्हें इतना चुप कभी नहीं देखा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, कृषा ने उसे घूरते हुए पूछा। मजाक नहीं बना रहा, बस पूछ रहा हूँ कि तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है, डोंट टेल मी कि तुम बेबी डेविल के बारे में सोचकर परेशान हो, युग ने कृषा के पास आकर कहा। हर बार की तरह युग कृषा का बिना कहे ही उसके दिल की बात समझ गया था। कृषा ने युग की आंखों में देखकर मासूमियत से कहा, उसी की फिक्र हो रही है, मैंने मैसेज किया था लेकिन उसने रीड तक नहीं किया। टाइम देखा है तुमने, इंडिया में इस वक्त लगभग 12 बज रहे होंगे, सो गया होगा वो, युग ने कृषा को समझाते हुए कहा। वो जल्दी नहीं सोता है, तुम जानते हो मेरा दिल घबरा रहा है जैसे वो किसी मुसीबत में हो। हाँ जानती हूँ कि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकता, उसकी हर तरीके से ट्रेनिंग हुई है, पर मुझे अजीब सा फील हो रहा है, कृषा ने अपने दिल की बात युग के सामने रखी। युग जानता था कि कृषा ध्रुव को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव है, अगर वो उससे बात नहीं करेगी तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। युग ने गहरी सांस ली और फिर कृषा के हाथ से मोबाइल लेकर ध्रुव को कॉल करने को हुआ। तभी कृषा उसका हाथ पकड़कर बोली, कॉल मत करो, अगर वो सो गया होगा तो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। सारे काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कृष, अगर वो सो गया है तो उठकर तुम्हारा कॉल रिसीव कर सकता है, लेकिन तुमने उससे बात नहीं की तो तुम पूरा दिन मेरी जान खाती रहोगी। तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझसे भी कोई काम नहीं होगा, युग ने जवाब दिया और फिर ध्रुव को कॉल लगाया। जैसा कि कृष्णा ने सोचा था, ध्रुव इस वक्त गाड़ी के अंदर था। उसके हाथ में चाकू लगने की वजह से दर्द हो रहा था और वो ड्राइव तक नहीं कर पा रहा था। काफी देर तक ध्रुव ने खुद को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन जब दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो गाड़ी के स्टेयरिंग पर अपना सिर टिकाकर बैठा हुआ था। जैसे ही ध्रुव ने देखा कि कृष्णा का कॉल आ रहा है, उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया और गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करके कहा, मैं ठीक हूँ मॉम। हाँ, जानती हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि जब मेरा दिल घबराता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तुमसे दूर रहने की आदत नहीं है, कृष्णा ने केयरिंग वे में कहा तो ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मैं काम में लगा था, इसलिए मोबाइल चेक नहीं किया। जरूरी नहीं होता कि अगर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ना दूं तो किसी मुसीबत में ही हूं, ध्रुव बोला। हाँ हाँ ठीक है, अब युग की तरह तुम भी मेरा मजाक बनाना बंद करो। हम जल्द ही अपना काम खत्म करके आ जाएंगे। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खाना, कृष्णा ने कहा। ध्रुव ने उसकी बात पर हामी भरी। कृष्णा कॉल कट करने को हुई तभी युग ने कहा, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। कृष्णा को लगा कि युग को कोई प्रोफेशनल बात करनी होगी, इसलिए वो वहां से बाहर चली गई थी। जबकि उसके वहां से जाते ही युग ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब बताओ क्या हुआ है, मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, वो इनोसेंट है, मैं नहीं। नाइफ लगा है डैड, बहुत पेन हो रहा है, ड्राइव नहीं हो रहा, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक गया था, वीर को कॉल करके बोल दूंगा तो वो लेने के लिए आ जाएगा, ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा। उसे युग के सामने किसी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। वेरी गुड, मुझे लगा ही था कि मेरे आने के बाद में तुमने अब तक किसी मुसीबत को दावत क्यों नहीं दी, युग ने सार्कास्टिकली सिर हिलाकर कहा। कम ऑन डैड, स्टॉप बीइंग सार्कास्टिक, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, नहीं ड्राइव हो रहा, ध्रुव थोड़ा इरिटेट होकर बोला। हाँ हाँ ठीक है, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ये नहीं कहा कि तुम सुपर ह्यूमन बनकर रहो, अलीजा या वीर को कॉल कर दो।
एल अलीजा मेहर को लेकर दिल्ली गई है, मेहर मुझसे मिलने आई थी और उसके पीछे दक्ष मल्होत्रा ने मुझ पर अटैक कर दिया। बहुत लंबी कहानी है डैड, बाद में बता दूंगा। वीर इस वक्त घर पर है उस लड़की के साथ जिसकी बेबी सिटिंग करने के लिए आपने मुझे लगा रखा है। अब कॉल रखिए, मैं पैदल ही घर जा रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, ध्रुव बोला। ठीक है, लेकिन घर पहुंचकर मैसेज कर देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कृष को सब कुछ बताना पड़े और वो फिर तुम्हें पूरे दिन अपने साथ कॉल पर लेकर बैठी रहे, युग ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। ध्रुव ने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकला। ध्रुव को इस वक्त बहुत इरिटेशन हो रही थी, वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोला, अजीब मुसीबत है, इससे अच्छा मैं एल को पहले खुद को ड्रॉप करने के लिए बोल देता। मानव नानू का हॉस्पिटल बहुत दूर है, नहीं जा सकता। अर्जुन मामू को कॉल करके बोला तो सीधा मॉम को सब बता देंगे। सारा मासी को पता चला तो वो दक्ष मल्होत्रा को शूट करने के लिए पहुंच जाएगी। अजीब फैमिली है मेरी, हेल्प लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सिर्फ एक एल है, वो भी अवेलेबल नहीं। ध्रुव गुस्से में बड़बड़ाते हुए घर की तरफ चल रहा था। लगभग 1 घंटे बाद वो अपने घर पहुंच चुका था। वहीं वीर ने जब उसे इस हालत में देखा तो वो हंसकर बोला, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम बहुत एक्सरसाइज करके आए हो? इरिटेट मत करो, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, ध्रुव ने चिढ़कर कहा और सीधा अपने कमरे में जाने लगा। वहीं उसके जाते ही वीर तारा के कमरे में गया तो वो अभी तक जाग रही थी। उसने तारा से कहा, तुम्हारी लाइफ का विलन आ चुका है, मैं घर जा रहा हूँ, बहुत गुस्से में है तो उससे दूर रहना। इतना कहकर वीर वहां से चला गया तो वहीं तारा का दिल नहीं माना। वो उठकर सभी कमरों में ध्रुव को देखने लगी। उसे एग्जैक्टली ध्रुव का कमरा पता नहीं था। इधर उधर टहलते हुए तारा ध्रुव के कमरे तक पहुंच ही गई थी। उसने देखा कि ध्रुव ने अपना शर्ट निकाल रखा था, ध्रुव की पीठ उसे दिखाई दे रही थी। उसकी फिजिक काफी अच्छी थी। ध्रुव का चेहरा दूसरी तरफ था। अचानक वो दरवाजे की तरफ पलटा तो तारा ने देखा कि ध्रुव खुद ही अपने हाथ से अपने स्टिचेस लगाने की कोशिश कर रहा था। उसको कट गहरा लगा था, चोट तो उसने जैसे तैसे साफ कर ली थी, लेकिन उल्टे हाथ से उसे स्टिचेस लगाने में दिक्कत हो रही थी। उसे चोट लगी देखकर तारा के मुंह से आह निकल गई। वो जल्दी से आई और बोली, जरूरी नहीं कि तुम सारे काम खुद से करो, अगर चोट लगी थी तो मुझे बुला लेते, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाती। तारा ने पूरा हक जताते हुए ध्रुव के हाथ से सुई ली और उसे स्टिचेस लगाने लगी। ध्रुव कुछ नहीं बोला, वो बस आंखें छोटी करके तारा की तरफ देख रहा था। तारा जिस तरह प्रोफेशनली उसे स्टिचेस लगा रही थी, उससे साफ था कि वो ये काम पहली बार तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। जख्म सिलने के बाद तारा ने उसे पट्टी की। उसने ध्रुव की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराकर कहा, हो गया है, बस पेन किलर ले लेना ताकि दर्द ना हो। इन्फेक्शन ना हो इसलिए इंजेक्शन लगाने की भी ज़रूरत है। कल सुबह हॉस्पिटल हो आना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में कैसे आई तुम? बहुत प्रोफेशनली कर रही हो सब कुछ। कौन हो तुम तारा अग्निहोत्री? तुमने खुद को एक नॉर्मल सा काम करने वाली लड़की बताया था, लेकिन तुम्हारे हाथ जिस तरह से चल रहे थे उससे साफ है कि तुम मेडिकल फील्ड में काम कर चुकी हो, ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा। ध्रुव की परवाह जताने के चक्कर में तारा ये भूल चुकी थी कि ध्रुव की क्या शख्सियत थी और वो इस वक्त वहाँ किस वजह से थी। बहुत मुश्किल से उसने ध्रुव के सवालों से निजात पाई थी, लेकिन उसकी हरकतों ने एक बार फिर से उसे शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था, और इस बार ध्रुव के सवालों से बचना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। क्या कभी ध्रुव तारा पर यकीन करेगा? पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।